ओम शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने स्वयं के लिए, पुरुषार्थ के लिए बच्चों को ध्यान खिंचवाया है कि हर एक अपनी अपनी चेकिंग करे कि मेरे अंदर कितने दैवी गुण आए हैं, कोई अवगुण तो नहीं है जिसे मुझे निकालना है। फिर बाबा ने पक्का कराया कि बाबा का बनकर के कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। अगर हाथ छोड़ कर के चले जाते हैं तो वह ब्राह्मण नहीं रहे, वो शूद्र ही कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान पहले नंबर का विकार है, लेकिन दूसरे नंबर का जो काम विकार है वह भी कोई कम नहीं है। और इस विकार के कारण तो ऐसा है कि 5 मंजिल से गिरना है, तो 5 मंजिल से कोई गिरता है तो सब हड्डियां टूट जाती हैं, या तो फिर कोई ना कोई मर भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति को रखना है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाने के लिए कौन सी पॉइंट रखनी है, कौन सी बात बुद्धि में रखनी है, वो बाबा ने कहा ये पक्का रहे उड़ती चढ़ती कला और उतरती कला। जब ये ध्यान रहेगा कि अब हमारी चढ़ती कला है तो ऑटोमेटिकली बुद्धि जो है बेहद के वैरागी बन जाएगी। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां पर कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। आज का प्रश्न है कि 2 शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता। किन 2 शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? इसका उत्तर तो दे ही दिया है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज अब तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कलप हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हो। दुनिया वाले तो समझते भी कलयुग शुरू हुआ है, कलयुग में बहुत सुख मिलेंगे, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के लिए क्या है, कलयुग अब पूरा हुआ। हमारे लिए कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। आज का गीत है धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख भरे दिन आएंगे। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कलप कलप बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते। पूरे कलप में एक ही संगम युग में रूहानी बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं हे मनवा, मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज रखो, आत्माओं से बात करते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा शरीर विनाशी। बाबा पक्का करा रहे हैं आत्मा का लेसन। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कलप के संगम में आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ। बाबा कहते हैं अभी धीरज रखो, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नरक में हो, सिर्फ तुम नहीं परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी पास होने वाला है। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया, क्योंकि तुम जानते हो अब ये दुनिया जल्दी पूरी होने वाली है। तो बाबा कहते हैं कलयुग भी तुम्हारे लिए जैसे कि पास हो गया, तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो ये फिर शरीर भी छोड़ेगी। आत्मा जब सतो प्रधान है तो ये पुराने शरीर की जरूरत नहीं है, फिर ये शरीर छोड़ करके अपने घर जाएंगे। तो बाबा कहते आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ देगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में के नया शरीर चाहिए, वहां तो सब कुछ नया ही होता है। बाप कहते हैं बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए क्या करो? बाबा कहते पुरुषार्थ करो। बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नारायण से, ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। कोई पूछते ना आप ये ज्ञान कौन सा है, बाबा कहते नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए, भक्ति मार्ग में कथा सत्यनारायण की कथा सुनाते ना पूर्णमासी के दिन, ये हुआ वो हुआ, सत्यनारायण की कथा में ये सुनने से ये हुआ, लेकिन करना क्या वो पता नहीं है। तो बाबा कहते कथा तो सुनते आए हो लेकिन अभी बनना है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह भक्ति मार्ग उससे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते जूट खंड में आते हो, अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनेंगे। हम ही तो थे, पहले हम ही थे, फिर बाबा राज बता रहे सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए, फिर हम जाके बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हम ही थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला, कितना भी इधर उधर पुकारते रहे लेकिन बाबा कहते एक बाबा ही है जो सबको पावन बनाता, एक ही बाप सबको पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे तुम सचिव में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान बहुत सुखी थे। याद आते हैं कितने धनवान थे कितने सुखी थे, बाबा पक्का कराते हैं, बहुत धनवान बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता है कौन सा राज्य, एक भाषा एक मत सब कुछ है, उसको कहा जाता है अद्वैत। तो बाबा कहते उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, कितनी भाषाएं हर जगह जगह पर हर कॉर्नर में अलग अलग भाषा, एक एक पांच माइल पर भी भाषा का अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं, जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है वैसे ही भाषाओं का भी झाड़ बढ़ता जाता है, जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। फिर होगी एक भाषा, एक भाषा एक राज्य एक मत होगा। फिर बाबा कहते फिर होगी एक भाषा, गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप ही दुख की दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटीजन की स्थापना, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आकर के डीटी धर्म की स्थापना करते हैं। ये है राजयोग की पढ़ाई, ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया, बाप ने जो सन्मुख बैठ सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में बैठ लिखा है। बाबा ने सुनाया फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने क्या किया, उसको कैसे कैसे करके लिख दिया हम। तो बाबा ने कहा फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो, अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं किस लिए, अभी भगवान तुमको पढ़ाते किस लिए, ऊपर चढ़ाने के, शास्त्रों से बाकी बातों से नीचे उतरे। लेकिन बाबा क्या करते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे चढ़ती कला होती है। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, भक्ति को कहा जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। क्यों? क्योंकि इससे सारी नॉलेज आ जाती है ना, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में तुम डरो मत, बाबा कहते उनको बताओ कैसे मनुष्य की हालत होगी, कैसे सृष्टि की हालत होगी, अब गिरते जा रहे हैं तो जरूर चढ़ेंगे ना, लेकिन कैसे चढ़ेंगे, जो बाबा ज्ञान देते हैं बाबा समझाते उससे तो चढ़ेंगे ना। तो बाबा कहते तुम डरो मत, भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को ना समझने के कारण विरोध करेंगे शास्त्रवाद करें। शुरू में क्या होता था, जब ज्ञान सुनाते थे ना लोग इन बातों को मानते ही नहीं थे, विरोध करते थे, शास्त्रवाद करते थे, शास्त्रवाद करने के लिए हमेशा बहस करते थे। मुझे याद आता है एक बार कहां धर्म नेताओं की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जगदीश भाई जी को बुलाया था, तो जगदीश भाई जब गए तो उनसे वो सब महात्मा खड़े हो गए, शास्त्रवाद करो शास्त्रवाद करो, इतना बहस किया। लेकिन बाबा ने तो बताया कि तुम बच्चों को शास्त्रवाद नहीं करना, नहीं किया भाई साहब ने, जगदीश भाई ने नहीं किया। तो फिर उनको धीरे धीरे समझाया, तो बाद में अभी तो समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई शास्त्रवाद नहीं करना है, बोलो शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना आदि ये सब है भक्ति कांड, भक्ति मार्ग है, भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफजी जलाते, कोई मरता है एक बार जलाते न, हर साल तो नहीं जलाते। रावण का तो देखो बुत बना करके हर साल जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसकी एफजी जलाते हैं, वैसे तो दुश्मन की एफजी जलाते, एफजी समझते ना बुत, तो बाबा कितने दुश्मन होगा, एक बार उसका बुत बना के जलाएंगे, हर बार हर साल तो नहीं करते ना, तो बाबा कितने वैसे तो दुश्मन की एफजी जलाते हैं अल्प काल के लिए, ये एक इस रावण की एफजी हर वर्ष जलाते रहते, वो केवल अल्प काल के लिए थोड़ा करेंगे, अभी तो रावण को भी बहुत बड़ा बड़ा मनाते जाते और हर वर्ष मनाते, तो बाबा कहते क्यों करते, क्योंकि रावण राज्य बढ़ता ही जा रहा है ना, तो बाबा कहते हैं अब वह इस रावण को एफजी को हर वर्ष जलाते आते, बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गए हो, बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गए हो, तुम कितने सुखी थे, बाप आते हैं सुख धाम की स्थापना करने, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते, दुखी होंगे पुकारेंगे तो पुकारेंगे ना, कोई आए हमको सुख दे, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र क्योंकि उनको जानते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि गीता में नाम बदल दिया है, पहले पहले तुम समझाओ, क्या समझाना है कि ऊंच से ऊंच एक बाबा है, पहले पहले तुम समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको ही करना चाहिए, एक को याद करना ही उसको अव्यवचारी याद कहा जाता है, अव्यवचारी ज्ञान कहा जाता है, अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते, बाबा कहते पहले शुरू में बहुत बहस करते थे कि तुम भक्ति क्यों नहीं करते हो, तो उनको बाबा के बच्चे क्या कहते थे, जितनी भक्ति हमने की है वो इतनी किसी ने नहीं किया, हमने इतनी भक्ति कर लिया अब उसके बाद ज्ञान मिला तो ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए, एक को याद करना उसको अव्यभिचारी याद अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है, तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है बाप पढ़ाते हैं जिससे हम ये देवता बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, अपना चार्ट रखो, बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने तो कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा कि हमारे में अभी कोई आश्री अवगुण तो नहीं है, देही अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम, पहला दुश्मन कौन है, देह अभिमान जिसको बाबा अवगुण कहते हैं, फिर दुश्मन क्यों बोला कि काम विकार बहुत तकलीफ देता है, बहुत तंग करता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर दुश्मन है काम, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तुम्हारा उद्देश्य ही है कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में और कोई भी धर्म थे नहीं, सचयुग में इन देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में, फिर बाबा तारे कलयुग में जो भी उनको मनुष्य कहते, सचयुग में भी मनुष्य है लेकिन उनको देवता कहते क्यों, क्योंकि उनमें दैवी गुण है, तो बाबा कहते हैं मनुष्य होते हैं कलयुग में, है भल वह भी मनुष्य, सचयुग में है भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले, इस समय सब मनुष्य हैं आश्री अवगुण वाले, सचयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं, बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, वहां रावण होता ही नहीं, ये भी मनुष्य नहीं समझ सकते, सचयुग में रावण कहां से आएगा, विकार कहां से आएगा, बाबा कहते ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते, गोल्डन एज में उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है, कौन सी दवा है, कौन सी गोली है, पता है कौन सी गोली, सबको पता है, रिपीट करो, है मन मना भाव, जिसको बाबा कहते अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। तो बाबा कहते उसके लिए एक ही दवाई मिलती है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए एक दवाई मिलती है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे ही हो यहाँ पर, किस लिए आए हो, बाबा हमेशा पक्का कराते, तुम आए हो पापों को भस्म करने के लिए, ना कि पापों को बढ़ाने के। आते हैं बाबा से मिलने, बाबा से कई प्रकार की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी कभी जरूरत की बातों में फंस जाते हैं। इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कुछ भी बात है बाबा से बिल्कुल क्लियर रहो और बाबा को बताओ, और कोई बातों में अपने को न फंसाओ, नहीं तो फिर काफी नुकसान हो जाते ना। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करने चाहिए, नहीं तो 100 गुना उसका दंड पड़ जाएगा, वही पाप 100 गुना बढ़ जाएगा, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा, विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम विकार, 5 मंजिल से गिरेंगे तो एकदम हडगुड मिस हड्डिया, 5 मंजिल से गिरेंगे तो एकदम हडगुड टूट जाएंगे, शायद मर भी जाए, कभी कभी कोई इतने तंग होते हैं 5वीं मंजिल से छलांग लगा देते हैं, तो क्या होता है हड्डियां टूटती हैं और मरते नहीं है, तो जिंदगी भर का और ही दुख सहन करते रहते, कोई कोई होता मर भी जाता। तो बाबा कहते शायद मर भी जाए, ऊपर से गिरने से एकदम चकना चूर हो जाते हैं, बाप से प्रतिज्ञा तोड़, अब बाबा क्या बता रहे, बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसरी दुनिया में चला गया, यहां से तो मर गया। बाबा कहते अगर ऐसा काम करते हैं कितना भी छुपाता रहे, लेकिन बाबा कहते वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो ब्राह्मण जन्म से जैसे कि मर गया, उनको ब्राह्मण नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं, पहले तो नशा रहना चाहिए, कौन सा कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, अगर समझो श्री कृष्ण भगवानों वाच्य भी हो, दुनिया में कहती है ना, तो बाबा कहते अब समझो श्री कृष्ण भगवानों वाच्य भी हो, वह भी तो जीव पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहती हैं मैं पुनर्जन्म रही, तो गीता में भी कहा हो ना कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं पुनर्जन्म रही, तो श्री कृष्ण तो नहीं कह सकता ना, ये कौन कह सकता, भगवान ही कह सकते हैं। तो बाबा कहती हैं, बाप कहती मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का बचपन है राधे कृष्ण, ब्रह्मा का भी राज समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, अब ट्रांसफर होती है पिछाड़ी में, इनका नाम ब्रह्मा रखा, यही लक्ष्मी नारायण फिर जाकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो बाबा कहते पिछाड़ी में इनका नाम ब्रह्मा रखा है, बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है, झाड़ के चित्र में देखे ना, एकदम ऊपर टॉप पर दिखाया। तो बाबा कहते कलयुग है आयरन एज, तो आयरन एज में ब्रह्मा को एकदम पिछाड़ी में दिखाया है, बाकी ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यहाँ फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण, कहाँ आयरन एज में, फिर वही तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से दोनों उसमें आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, विष्णु कहने से लक्ष्मी नारायण, और पहले ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ब्रह्मा और सरस्वती, ये बातें कुछ समझ ना सके। चार भुजा ब्रह्मा को देते हैं। बाबा कहते क्यों चार भुजा देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो बाबा कह रहे हैं चार भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले तो ये ज्ञान दे ना सके। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते, बाहर जाते हैं उनको बताते हैं हम आपको भारत का प्राचीन योग सिखाएंगे, लेकिन भारत का प्राचीन योग एक है हठ योग, एक है राजयोग, राजयोग तो नहीं बता सकते ना। तो बाबा कहते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग तो सिखला न सके, वो निवृत्ति मार्ग का हठ योग सिखला सकते हैं, परंतु राजयोग तो वही सिखला सकता है जो समाज में परिवार में रहता है ना। तो अब सन्यासी राजयोग तो सिखला न सके, अब ईश्वर आए हैं, अब तुम उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय के। ईश्वर आए हैं किस लिए? तुमको पढ़ाने के। एक तो हम ईश्वरीय संप्रदाय, दूसरा पढ़ाने के लिए, फिर दैवी राज्य का मालिक बनाने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। अब कैसे बाबा ने बनाया है? ब्रह्मा बाबा द्वारा बनाया। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में है, कौन है अब बताइए? ब्रह्मा बीच में कौन है, कौन बताएगा? बताओ, बोलो, कोई भी बोले। बाबा कहते दलाल है, कभी कहते बीच में है, क्या कहेंगे? आज बाबा ने कहा वो इंटरप्रेटर है, नहीं जैसे होता है ना, अभी देखो कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा है, हिंदी चल रही है उसकी, इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश से मलयालम चल रही है, फिर वहां उससे फिर क्या तमिल चलती है, कई भाषाओं में जो बोलता है ट्रांसलेट करता है उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। कोई आप बात करते हैं तो समझो वो भाषा दूसरा नहीं जानता तो उसको वो समझाता है, उसको इंटरप्रेटर करते हैं। तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी क्या है? शिव बाबा जो बताते हैं वो ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं। तो आज बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा जो है वो इंटरप्रेटर है। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ। अब दोनों बातें, भाग्यशाली रथ भी है और ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, शिव बाबा को मैंने अपना रथ दिया। कभी कभी बाबा मुरली में सुनाते ना, मैं बाबा की रथ को खिलाता हूँ, मैं बाबा की रथ को संवारता हूँ, पूरा टाइम एक। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते थे ये मेरा रथ है, ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा का ही है। तो क्योंकि दिया किराए पर, ये नहीं कहा कि मैंने किराए पर दिया, जैसे कोई मकान देता ना किराए पर, ठीक है मालिक तो मैं हूँ लेकिन इसको किराए पर दिया, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैंने किराए पर दिया, शिव बाबा ने कहा कि मैंने किराए पर लिया। और ब्रह्मा बाबा क्या कहते, शिव बाबा के मकान को, शिव बाबा के रथ को मैं खिलाता हूँ। तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम भी पति से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आश्री संप्रदाय है ना, अभी तुम हो कौन है? पहले बाबा ने कहा तुम कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय, दुनिया में रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं स्त्री पुरुष घर में इकट्ठा रहो, ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है। दुनिया में ऐसे कहते ना, सन्यासी ने कह दिया इसलिए वो घर बार छोड़ करके चले गए। आपको पता है कि पहले भी एक बार महात्माओं का प्रोग्राम रखा था तो उस समय दादी ने और जगदीश भाई ने खास ये किया था कि जो भी बाल ब्रह्मचारी हैं, जो भी युगल इकट्ठे रहते हैं उनको इनवाइट किया था और महात्माओं को बताया कैसे अपने घरों में रह करके सब किस तरह से पवित्र जीवन व्यतीत करें। तो उनको अच्छा लगता था कि ये ज्ञान इतना ऊंच है, कि इतनी धारणा ऊंच है, वो पढ़ाने वाला कौन है, बाबा ही हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वर संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ देते हैं। अब यहाँ बाप कहते हैं भल स्त्री पुरुष इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन। ये भक्ति में ऐसी बातें कही। यहाँ तो आजकल बाबा ने कहा है कि दुनिया में भी अभी क्या है, नारी जाति को तो आगे उठा रहे ना, ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है। कोई भी बाबा के बच्चे समझते घर बार छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाए तो बाबा कभी भी उनको नहीं बिठाते। बाबा कहते थे घर में जाओ, घर में ही रहना है, वहीं रहते सब कारोबार करते, बाबा को याद करना। तो बाबा कहते तुमको भागना नहीं है, वह हद का संन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस वैकारी दुनिया से है वैराग्य। रहना यहाँ है, तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस बेकारी दुनिया से है वैराग्य। ये सब बातें तुम अच्छी रीति धारण करते हो और करनी है, नोट भी करना है और परहेज भी रख रहे, धारण भी करना है जो बाबा समझाते हैं, उस पे ध्यान भी देना है और जो ब्राह्मण जीवन का नियम है परहेज, तो बाबा कहते परहेज भी करनी है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते लेकिन तुमको बनाते। कितना बड़ा भाग्य है, बाबा ना सतयुग में आते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। बाबा कहते बाप नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते, तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता ये बनते, शिव बाबा कहते मैं नहीं बनता ये बनता, मैं ये ब्रह्मा बनता है, ये बनते हैं। 84 जन्म भी इसने ही लिए हैं, इनको भी सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आना ही है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता, तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, महात्मा कहा जाता है क्योंकि उसमें विकार होते नहीं, छोटा उसको पता ही नहीं विकार क्या चीज है, इसलिए उनको फूल भी कहा जाता है। सन्यासियों से तो छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्यों, क्योंकि सन्यासियों ने तो ये सब देखा है और उससे वैराग्य हुआ तो छोड़ के चला गया, छोटे बच्चों ने तो देखा ही नहीं है ना, तो इसलिए छोटे बच्चे को भी क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर जाते हैं, दुनिया देखी है ये सब देखा है उसके बाद छोड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पांच विकारों का उन्हें अनुभव है, बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है, इसलिए छोटे बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बच्चे इतने शरारती होते हैं, क्या क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं, तो भी बच्चों को देखते हैं तो खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर, माताएं छोटे छोटे बच्चों को ले आती है, उनको सिखा देती है आत्मा कहाँ है, शिव बाबा कहाँ, वो सब पक्का होता है, लेकिन उनको सिखाया हुआ तो भी पक्का करते हैं, तो प्यारे से लगते ना। और थोड़े बड़े होते बहुत शरार, पूरा टाइम घूमते रहेंगे, आवाज करते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे है, फूल समान है ना। तो बाबा कहते हैं पांच विकारों को सन्यासियों को अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता है, इसलिए बच्चों को देख खुश होते हैं ना, खुशी होती है, क्योंकि वह चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते ही हो, देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। बाबा कहते अमर लोक में चलने का पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो, देवता बनने के लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं, भाई बहन तो थे ना, पहले भी भाई बहन थे लेकिन भूल गए, तो बाबा के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण भाई बहन हो गए, भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता की ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बाबा के आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है, जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने तो सृष्टि की रचना कैसे हो, क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं ना, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक उसके बच्चे नहीं बनेंगे तब तक सृष्टि की रचना कैसे होगी। प्रजापिता ब्रह्मा के सब कौन है, बाबा ने कहा रूहानी बच्चे, शिव बाबा के भी रूहानी और प्रजापिता ब्रह्मा के भी रूहानी बच्चे, वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले, वह पतित और तुम हो पाव, वो यात्रा भी कराते हैं पतित भी बनते रहते हैं। बाबा कहते तुम यात्रा करते और पावन बनते हो, वह है पतित तुम पावन, वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, भल ब्राह्मण कहलाते हैं परंतु ये तो नहीं कहते ना कि हम अभी प्रजापिता की संतान ब्रह्मा की संतान है, पूर्वज थे लेकिन अभी तो नहीं कहते ना, ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में न जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, आज बाबा जैसे बड़ा ध्यान खिंचवा रहे, बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई भी क्रिमिनल काम नहीं करना। जैसे बाबा होता है, बाप भी कहते हैं दुनिया में भी कोई बाप होता है, रॉयल होता है, बड़ी पोस्ट होती है, तो बच्चे को ध्यान खिंचवाते हैं कि तुम ऐसा काम नहीं करना जो मेरा नाम खराब करो। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाए, नहीं तो क्या हालत होगी, क्योंकि फिर जितना भी समझाओ ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी है ना, ये बाबा ने कई बार सुनाई और सब जानते, इन परियों की इंद्र सभा लगी थी, परियां थी, एक परी अपने साथ भिखारी किसी को ले आई, तो उस समय सबको वो वाइब्रेशन आने लगे। तो बाबा कहते इंद्र सभा की कहानी है ना, शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में भी उसकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित सभा, पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर बोला कि ये सब क्यों लाया है, फिर उनको शराप दे दिया, वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। आपको पता हो साकार बाबा के टाइम पर, बाबा के सामने ऐसी क्लास के टाइम पर बाबा हमेशा कहते थे जब तक बाप को नहीं पहचाना है और ज्ञान नहीं समझा तब तक वो क्लास में नहीं बैठते थे। सेवा कभी कभी कोई ऐसा होता था वो भी बाबा उनसे अलग से मिलते थे, बाकी बाबा का ये था कि जब तक नहीं समझाए पवित्र नहीं बना तब तक बाबा उनसे नहीं मिलते थे, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तो वो सेवा अर्थ आते हैं, यहाँ रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उस समय की बात बाबा बता रहे हैं। वास्तव में सभा में कोई भी पतित आ नहीं सकते, भाई बाप को मालूम पड़े वा ना पड़े, कोई कहे हम जाके बैठ जाते, बाबा को क्या मालूम कि मैं पतित हूं या नहीं, बाबा कहते भल वो पड़े ना पड़े लेकिन उसके वाइब्रेशन तो पहुंच जाते ना। तो बाबा देखते थे वह अपना ही नुकसान करते, कई बार कोई आ जाए सुनने के लिए, जैसे बैठेगा बाबा जो सुना रहे उसकी बुद्धि इधर भटकेगी, समझ नहीं आएगा, वो उसको कुछ नहीं बुद्धि में बैठ रहा, तो वाइब्रेशन तो पहुंच जाते ना। तो बाबा कहते हैं भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, वह तो अपना नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं, क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि वो बाबा को ही नहीं पहचानता था, वो सोचेगा कोई पता नहीं कौन बैठा है, कोई भाषण करने वाला बैठा है। तो बाबा कहते थे पतित को अलाउ नहीं है, उनके लिए विस्टिंग रूम ठीक है। अभी तक भी सेंटर का वही सिस्टम है कि जब भी कोई नया आता है उसको पहले विस्टिंग रूम में बिठाते हैं, उसको थोड़ा ज्ञान सुनाते हैं, वहां पर बैठे उनसे बातचीत करो। तब बाबा कहते उनके लिए विस्टिंग रूम ठीक है, जब पाउंड बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे तब अलाउ करे। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है कि बाबा को याद करना है, तो पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। ये भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है, पतित पावन। तो बाबा बताते हैं कि दोनों की महिमा अलग अलग है, पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। भगवान को कहते हैं ना पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है, तो बाबा कहते वो बाप ही है, पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम का ये भी चक्कर है। कैसे, पहले आते हैं शांति धाम जाते, फिर सुख धाम जाते, फिर दुख धाम, फिर दुख धाम से फिर शांति धाम, फिर पाठ बजाने सुख धाम आते। तो बाबा कहते हैं शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है, शांति धाम से सुख धाम में वो जाएंगे जो नंबर वार पास हो गए। अब शांति धाम में तो सब जाएंगे लेकिन सुख धाम में कौन जाएंगे, जो नंबर वार पास होंगे वही आते रहेंगे, शुरू में थोड़े फिर थोड़े थोड़े करते आते रहेंगे। ये चक्र फिरता ही रहता है, ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट अपना है, सबका पार्ट नंबर वार है, जाएंगे भी नंबर वार, पार्ट भी नंबर वार, जाएंगे भी नंबर वार और आएंगे भी नंबर वन। उसको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्र माला। नंबर वार जाते हैं फिर नंबर वार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसे ही होता है, कहां पहले धर्म संस्थापक जाएगा, फिर धर्म के बिल्कुल धर्म संस्थापक के जो राइट हैंड वो जाएंगे, वहां दूसरे धर्म वालों का भी ऐसे नंबर वार होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है स्कूल में, फिर सुनो अभी बाबा क्या बता रहे हैं बच्चों को क्या करना है। बच्चों को रोज समझाया जाता है कि स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अब्सेंट हो जाएंगे। स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो अब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए, फिर बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई की क्या चाहिए, पढ़ाई क्या है, मुरली क्या है, पढ़ाई क्या है, बोलो क्या चीज है, बोलो तो सही, लिफ्ट है, ये लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गौंडी यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होना चाहिए, मगर कितनी यूनिवर्सिटी है तो इसमें एब्सेंट थोड़ी होना चाहिए, पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहां तो अनाज आदि सब फ्री रहता। आजकल कितना महंगा हो गया, कभी कमी होती है। उस समय बाबा के टाइम पर एक ऐसा समय आया था कि अनाज ही नहीं मिलता था, और अनाज खरीदने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था, अमेरिका भी लाल गेहूं भेज दिया था। उस समय ऐसा आया था देश की हालत, लेकिन बाबा कहते अभी भी मिल तो रहा है, फिर भी कितना महंगा है ना। तो बाबा कहते सुख धाम के अंदर सुख वहां पर अनाज आदि इतना होता है, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा भी नहीं लगता, पैसा है ही नहीं जो खरीदना पड़े, वहां तो इतना है कौन बैठ के खरीदेगा, पैसा नहीं लगता। अभी तो देखो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया, आज से 50 साल भी इतना नहीं हालत थी, अभी देखो इस 100 वर्षों के अंदर कहां भारत के अंदर इतना माला माल था, सब कुछ लूट के ले गए, और कहां जाकर के इतनी महंगाई बढ़ गई ना, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए मुश्किलात आए, वह है ही सुख धाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम अभी क्या बनते हो, बेगर टू प्रिंस। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम अभी बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते, आज की दुनिया में कितने करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कभी नहीं कहेंगे हम बेगर हैं, लेकिन सतयुग के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा कहते साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है बाप से जो संपूर्ण बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं। बाप से जो संपूर्ण बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है, बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट रखना है, अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। दूसरा है गौली यूनिवर्सिटी में कभी भी अपसेट नहीं होना, गौली यूनिवर्सिटी में कभी भी अपसेंट नहीं होना है। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी, इतनी ऊंची पढ़ाई है बाबा कहते एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुनने, बाबा हमेशा कहते थे मुरली के अंदर रोज नए नए ज्ञान रत्न है, अगर एक भी मिस करेंगे तो ज्ञान रत्नों की कमी पड़ जाएगी, इसलिए बाबा कहते इतनी ऊंची पढ़ाई है कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भाव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भाव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते, अभी तो रेगिस्तान में भी कितना जमीन को इतना फर्टाइल कर देते ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा न उन्हीं द्वार को भी उन्हीं द्वार बना सकते हैं। सिर्फ एक सेकंड, हर सेकंड की वैल्यू को जान, सिर्फ हर सेकंड और हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपको आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प ही पद्मा पदम पति बना देता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अब व्यक्तिशारे जो भी का टाइटल चल रहा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। टाइटल क्या चल रहा है? संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर जो कर्म बंधन में जहां बैठी वहां कार्य कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपनी सेवा का पाठ बजा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत हैं, उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकती हैं, तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, सब बैठे रहे, जो भी भाई बहने एक रात के लिए या अभी सुबह आए हैं वो हाथ खड़ा करें। बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी सेवा का टर्न दिल्ली जोन, जो दिल्ली जोन के वो हाथ खड़ा करें, दिल्ली जोन वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, स्वागत है। दिल्ली को तो बाबा बहुत प्यार भी करते हैं, याद भी करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि जो भी भाई बहने आए हैं, थोड़ा सुन के भी जाएंगे, और सभी का सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे जो है बैठने या खड़े होने की जगह नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी नीचे नहीं, सभी ऊपर जाएंगे, और लिफ्ट भी है। और दूसरी बात, जैसा कि कल आपको बताया था, बाबा के यज्ञ के एक विशेष रत्न सोमेश भाई, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में बहुत सेवाएं उन्होंने दी हैं, और लास्ट में भी यहाँ पांडा भवन और ग्लोबल हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट में सीए के रूप में अपनी सेवाएं कर रहे थे, और कुछ एक डेढ़ साल से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपना भौतिक शरीर परसों त्याग करके बाबा की गोदी में गए हैं, और जैसा कि कल बताया था कि आज प्रातः 9:30 बजे उनके भौतिक शरीर को चारों धाम की यात्रा के लिए पांडा भवन में लाएंगे, और उसके बाद अंतिम विदाई के लिए यहाँ आबू में, माउंट आबू में शमशान की ओर ले जाएंगे। तो सभी माताएं भाई सभी सुनेंगे, जो भी पुष्प अर्पित करते हैं, ब्राह्मण जीवन का नियम है कि उसके बाद उनको स्नान करना होता है, और पूरा स्नान करना है, और कपड़े आदि चेंज करने हैं, इसलिए किचन में भी नहीं जाना है। इसलिए जो भी हैं जिनके पास साधन नहीं है, वो ऊपर मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियों पर खड़े होकर के देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, और दूर से खड़े हुए अपने वाइब्रेशन दें, शुभकामनाएं दें। बाकी नजदीक जो आएंगे, जो नियम अनुसार पूरा स्नान करना होता है, और जब तक स्नान नहीं किया तब तक किचन की तरफ नहीं जाते हैं। और बाकी तो उनका लौकिक परिवार में भाई हैं, उन्होंने भी अपना कह दिया कि आप करें। उनका लौकिक भतीजा कल रात को यहाँ पहुंच चुका है, तो आज प्रातः 9:30 बजे यहाँ पांडव भवन के भौतिक श्री को लाया जाएगा, और शाम को 7:00 बजे उनके निमित्त भोग हिस्ट्री हॉल में रहेगा, तो ये भी आपको बता रहे हैं। और वो तो वैसे भी बाबा के विशेष रतन रहे हैं और यहाँ बाबा के ही यज्ञ में सेवा समर्पित रूप से कर रहे थे, तो मधुबन के ही हैं, तो उनके निमित्त हम सभी कल भी योग में बैठ के श्रद्धांजलि दी, अभी भी हम बाबा की याद में श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर मेडिटेशन, ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक, टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस। डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेलकम टू पांडवपुर। एंड देन आफ्टर मेडिटेशन आई विल अनाउंस टुडेज प्रोग्राम। ओम शांति। दिल्ली की टीचर मैंने भी हाथ खड़ा करे, टीचर मैंने